आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
हेलो, गुड इवनिंग। 5 दिसंबर की शाम ढल चुकी है और दिल्ली एनसीआर में थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है। मैं नितिन ठाकुर लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। तो आज किन खबरों पर बात होगी बताते हैं। गुजरात में चुनाव की तिशरी हो गई, आज दूसरे दौर की वोटिंग के बाद कौन सी पार्टी कहां खड़ी है इस पर बात होगी। साथ ही हिमाचल और एमसीडी चुनाव को लेकर एग्जिट पोल क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। यूपी में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए, तो ये 3 सीट सूबे की सियासत पर क्या असर डालेगी ये जानेंगे। फिर चुनाव के माहौल में एक टेंशन है जो लोगों को खाई जा रही है और वो है कम उम्र के लोगों की हार्ट अटैक से मौत। आजकल एक पैटर्न सा क्यों बन गया है और कुछ लोग कोरोना वैक्सीन को भी इससे जोड़कर देख रहे हैं, तो वो कितना सही है एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन अभी सुनते हैं 60 सेकंड हेडलाइंस कुमार केशव से।
शुक्रिया नितिन। गुजरात में विधानसभा चुनाव खत्म, दूसरे फेज में शाम 5 बजे तक करीब 58% वोटिंग। हिमाचल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त, बीजेपी को 24 से 34 और कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान। एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत, 150 से 171 सीटें जीतने की संभावना। राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस नेता ने आरएसएस पर फिर साधा निशाना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर चलेगा मुकदमा, लखीमपुर खीरी केस से नाम हटाने की अपील खारिज। जर्मन विदेश मंत्री अन्ना लेना बेयरबॉक 2 दिन के भारत दौरे पर, विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। विदेश से कमाई के मामले में भारत ने पाकिस्तान और चीन को पछाड़ा, 8 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी प्रवासी भारतीयों की कमाई। इंडोनेशिया में आया नया क्रिमिनल कोड, पत्नी के अलावा किसी से संबंध बनाने पर जेल, राष्ट्रपति के खिलाफ बोलने पर भी सजा। भारत नेपाल बॉर्डर पर पथराव, विरोध में व्यापारियों ने लगाया जाम। और रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड की रोमांचक जीत, 74 रन से हारा पाकिस्तान।
यह दिन भर मैं हूं नितिन ठाकुर। गुजरात में चुनाव का शोर थोड़ा थमा है, अब नतीजों का इंतजार है। 8 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किस पार्टी की किस्मत जगाई है। आज सेकंड फेज का मतदान था, इसमें 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज अहमदाबाद में मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने दांता विधानसभा सीट से पार्टी कैंडिडेट पर हमला करने का आरोप बीजेपी पर लगाया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर वोटिंग के दिन रोड शो करने का भी आरोप लगाया है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मतदान के दिन पीएम मोदी ने वोट डालने के लिए जाते वक्त 2.5 घंटे तक रोड शो किया और इसके खिलाफ वो चुनाव आयोग से अपील करेंगे। तो सियासी आरोपों से इतर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सेकंड फेज में 58% वोट पड़े, पहले चरण में करीब 63% पड़े थे। तो ये वोटर टर्नआउट कहता क्या है? गुजरात में क्या बीजेपी की सत्ता कायम रहेगी या फिर परिवर्तन के संकेत है? ये हमने पूछा गुजरात में मौजूद आज तक रेडियो की सीनियर रिपोर्टर गोपी घांगर से।
देखिए, ये पहली बार अगर आप देखेंगे फर्स्ट फेज का जो वोटिंग हुआ था, फर्स्ट फेज की वोटिंग में भी जब राम को वोटिंग परसेंटेज आए थे तो वो 59 के आसपास थे और उसके बाद दूसरे दिन जब पूरा कैलकुलेशन होके वोटिंग परसेंटेज आया तो 63 वोटिंग परसेंटेज था। तो माना जा रहा है कि अभी तक जो फाइनली 5 बजे के बाद वाले जो वोटिंग है और जो कहीं दूर दराज के गांव के जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो कल मॉर्निंग में एक फाइनल आंकड़ा सामने आएगा और फाइनल आंकड़ा सामने आने के बाद भी ये क्लैरिटी मिलेगी कि कितने परसेंटेज में वोटिंग हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये पहली बार अगर आप देखेंगे जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहले चरण और दूसरे चरण का मिला के हो सकता है कि करीब 63% के आसपास जो वोटिंग है वो हुआ हो। तो वैसे में अगर देखें तो ये वोटिंग परसेंटेज भले ही डाउन गया है लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी, अगर आप एग्जिट पोल्स को देखेंगे तो बीजेपी का जीत का आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा दिखा रहा है।
अच्छा, बनासकांठा साबरकांठा जैसे इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसको कैसे आप देखते हैं?
बिल्कुल, देखिए बनासकांठा और साबरकांठा को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि ये रूरल इलाके हैं, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा देखने मिलता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं उनको ये सारी चीजें, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में हमेशा एक अलग उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, अलग चीजें रहती है, और उसके वजह से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वहां का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट ज्यादा रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई की इम्पैक्ट जो है वो आपको गांव के अंदर देखने मिलेगी। और बेसिकली गुजरात जो है किसानों में सबसे ज्यादा जो गुस्सा था वो था, यहाँ तक कि जो वहां के युवा है जो रोजगार के लिए गुजरात के शहरों में आते हैं तो वहां पे, क्योंकि पहले से ही ये देखा गया है, चाहे आप किसी भी साल के वोटिंग को देख लीजिए, तो यहाँ पे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आपको कांग्रेस आगे दिखेगी जबकि अर्बन इलाकों में बीजेपी आगे देखने मिलती है।
बहुत बहुत शुक्रिया गोपी। चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल के आंकड़े भी आने लगे। कल 250 वार्ड पर हुए चुनाव में करीब 50% वोटिंग हुई थी दिल्ली में। चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे, तो नतीजे जब आएंगे तब आएंगे। फिलहाल एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं। इंडिया टुडे माई एक्सेस इंडिया का डेटा क्या कहता है, यह हमने पूछा दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर अमित भारद्वाज से।
देखिए, जो इंडिया टुडे का सर्वे है उसमें निश्चित रूप से बात साफ निकल के आ रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में पहली बार बनने जा रही है। इस बार एक इम्प्रेसिव नंबर्स आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं, लेकिन उसकी बारीकियों को भी समझना जरूरी है। जिस तरह के नंबर्स सामने आ रहे हैं, इन बारीकियों को समझिए कि हमारे एग्जिट पोल में 149 से 171 सीट्स आम आदमी पार्टी को दिया जा रहा है और बीजेपी को 69 से 91 सीट दी जा रही है। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस को 3 से 7 सीटें दी जा रही हैं और कई दफे है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, स्ट्रांग होल्ड्स हैं कुछ पॉकेट्स में लोगों का, तो उन लोगों को, इंडिपेंडेंट्स को या अन्य को 5 से 9 सीटें दी जा रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ी बढ़त इंडिया टुडे माई एक्सेस एग्जिट पोल में दिख रही है। लेकिन इन आंकड़ों को समझिए कि 149, 179 यानी कि जो एक स्वीपिंग मेजोरिटी की बात हो रही थी, जो अरविंद केजरीवाल जिसकी बात कर रहे थे कि 200 से ज्यादा का आंकड़ा आएगा, बीजेपी 20 सीटों पे सिमट जाएगी, और वो हमें ग्राउंड पे भी दिख रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है, वही कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन फैक्ट यही है, सच्चाई यही है कि इन अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को हम लोग रियलिटी में कन्वर्ट होता है तो इट्स अ बिग विन फॉर आम आदमी पार्टी दिल्ली में।
अच्छा अमित, आप तो लगातार एमसीडी इलेक्शन को ट्रैक कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल के आंकड़े क्या हैं, क्या कहते हैं, जमीनी हकीकत से कितना मेल खाते हैं, आपकी रीडिंग क्या है कुल मिलाकर, ये बताइए।
जी देखिए, अगर मेरी रीडिंग आप कहेंगे तो इस बार चुनाव में एक तो वोटिंग कम हुई और उसके साथ साथ जो पुराने चावल जिसको हम लोग राजनीतिक भाषा में कहते हैं, जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो एमसीडी की पॉलिटिक्स को समझते हैं, जिनको आइडिया है साफ तौर पे कि एमसीडी की राजनीति वोटिंग कैसे काम करती है, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट बीजेपी ने दिया था। इसलिए आम आदमी पार्टी का जो दावा था कि वो 200 के आंकड़े को पार करेंगे, बीजेपी 20 सीटों पे सिमट जाएगी और कांग्रेस कहीं नहीं होगी इस लड़ाई में, मुझे लगा कि उस तरह की तस्वीर नहीं बन के आएगी, क्योंकि बीजेपी का जो टिकट सिलेक्शन था कई सारे जगहों पे, जो कांग्रेस के भी अच्छे प्लेयर्स थे या बीजेपी के अच्छे प्लेयर्स थे जिनको एमसीडी का गेम पता है, उन लोगों को उतारा गया। और यही वजह है कि वोटिंग जब कम होती है तो इस तरह के जो कैंडिडेट्स होंगे, मुझे लगता है कि रिजल्ट वाले दिन अपनी जीत को हासिल करेंगे, जिसकी वजह से आपको बीजेपी के आंकड़ों में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और यही कारण है, मुझे नहीं लगता है कि 200 के आंकड़े को आम आदमी पार्टी टच करेगी, जिसका दावा लगातार हो रहा था। और कमोबेश मेरा आंकलन था कि 150 के आसपास ऊपर नीचे रहेगा ये आंकड़ा, और बहुत ज्यादा बिल्कुल हिस्टोरिक मैंडेट जिस तरह से 2 बार आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में अचीव किया था, 67 और 62 सीटों वाला, उस तरह का मैंडेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक मेजोरिटी हासिल होगा। मुझे लग रहा था कि 150 के आसपास होगा और एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं उसी तरह की तस्वीर साफ कर रही है। लेकिन एक और चीज है इसमें कि वोट शेयर का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में 8% तक का वोट शेयर का डिफरेंस चला जाता है, तो हो सकता है कि तस्वीरें बदल जाएंगी। और इसमें एक फैक्टर तब ये कहा जा सकता है कि जो अपर क्लास का वोटर था या अपर इकोनॉमिक स्ट्रैटा का वोटर था वो नहीं निकल के आया था वोट देने के लिए, और ये माना जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये जो वोट बैंक है उसका एक बड़ा तबका बीजेपी को वोट करता है, बीजेपी को बेनिफिट होता है उससे, जो बेनिफिट इस बार उसको संभवतः नहीं मिला है, और लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के वोटर्स बड़ी संख्या में दिखाई दिए हमको, और उसका फायदा संभवतः आम आदमी पार्टी को मिला है।
बहुत बहुत शुक्रिया अमित भारद्वाज। गुजरात और एमसीडी के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो गई थी और 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जैसे बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। तो हिमाचल चुनाव को लेकर एग्जिट पोल क्या कहता है, ये हमने पूछा हिमाचल प्रदेश में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर ललित शर्मा से।
देखिए, अगर हम एग्जिट पोल के नतीजों को देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस को 44% वोट परसेंटेज है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर बीजेपी के खाते में लगभग 42% वोट परसेंटेज है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्हें 2% वोट परसेंटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अगर हम सीट की अगर हम कन्वर्ट करें वोट परसेंटेज को तो उसमें भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 30 से 40 सीटें हैं उसके मिलने के आसार है। वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को लगभग 24 से 34 सीटें मिलने के आसार है, जबकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यानी कांग्रेस को फिलहाल हिमाचल प्रदेश में एक एज नजर आ रहा है, बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, और खासतौर पर अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो जो जादुई आंकड़ा है 35 का उसको पार करती हुई फिलहाल कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है।
ललित, वहां के लोगों का रिएक्शन क्या है इन आंकड़ों को लेकर?
देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश की सियासत को देखें तो लगभग पिछले 37-38 वर्षों को देखा जाए तो कभी भी सत्ता है वो रिपीट होते हुए नजर नहीं आए। बड़े कद्दावर नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, 6 बार के हैं, वो भी कभी अपने समय में सरकार को नहीं रिपीट करवा पाए। वहीं पर इस बार जरूर भाजपा ने, बीजेपी ने नारा दिया था कि इस बार रिवाज बदला जाएगा, जबकि राज नहीं बदला जाएगा। जबकि अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने भी साफ तौर पर कहा कि इस बार फिर से उसी तरह का जो रिवाज है वो रहेगा। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल के रिजल्ट की बात करें या फिर जिस तरह से हम लगातार ग्राउंड जीरो पर है तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है हिमाचल प्रदेश का वो कह रहा है कि जो कंपटीशन है वो बिल्कुल एज का रहने वाला है। बाकी 8 तारीख को जिस तरह के नतीजे आएंगे उससे चीजें क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच जरूर नजर आ रहा है, और कांग्रेस को फिलहाल एक एज जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उसके साथ साथ 2 से 3 बड़े मुद्दे हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं जिसको लेकर है कांग्रेस काफी ज्यादा हमलावर रही, और इन्हीं मुद्दों को लेकर है वो आम जनता के बीच गई। अगर हम उन मुद्दों की बात करें तो उसमें ओल्ड पेंशन है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 लाख के आसपास जो एम्प्लॉयज है वो सरकारी है और उनका एक बड़ा वोट शेयर होता है। दूसरे अगर हम बड़े मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर जो किसान और बागवान है उनका मुद्दा बहुत छाया रहा है, जीएसटी को लेकर है, वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हमलावर है। उसके साथ साथ कांग्रेस इस मुद्दे को खूब भुनाया। तो एंटी इनकम्बेंसी, जो बढ़े हुए रेट से अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, उन तमाम इश्यूज को लेकर है जो कांग्रेस है वो रही। एंटी इनकम्बेंसी जरूर भाजपा के खिलाफ थी, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने चुनाव प्रचार किया, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो जरूर कड़ा फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम एज की बात करें तो जरूर जो एज है वो कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है।
बहुत शुक्रिया ललित। गुजरात चुनाव के अलावा यूपी में भी 3 सीटों पर आज उपचुनाव हुए। इनमें एक मैनपुरी की लोकसभा सीट थी, मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई थी। सपा ने डिंपल यादव को यहां आगे किया और बीजेपी ने रघुराज शाक्य को। अखिलेश यादव ने सैफई में आज वोट भी डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने डिंपल यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि पुलिस कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी को वोट पड़ने ही न दिया जाए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बूथ कब्जे करवाना उनका स्वभाव रहा है और निष्पक्ष चुनाव हमारा स्वभाव है। तो उपचुनाव में हुई वोटिंग परसेंटेज को देखें तो शाम 5 बजे तक मैनपुरी में करीब 52%, खतौली में 55% और रामपुर में करीब 32% मतदान हुआ। तो इन तीनों सीट्स पर हुए उपचुनाव को लेकर हमने बात की आज तक .in के असिस्टेंट एडिटर कबूल अहमद से। कबूल, मैनपुरी में इतनी जबरदस्त लड़ाई क्यों देखने को मिली? सपा और भाजपा के लिए क्या दांव पर लगा है वहां?
निश्चित तौर पे जो मैनपुरी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 2022 के बाद जिस तरह से अपनी जीत के सिलसिले को जारी है उसको वो बरकरार रखना चाहती है और वो एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ को जीतती जा रही है। बदायूं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, रामपुर जैसी सीट जो है वो जीत चुकी है। अब ऐसे में अगर वो मुलायम सिंह यादव की जो मैनपुरी है सीट अगर उसे जीतती है तो निश्चित तौर पे इसका असर आने वाले जो 2024 का लोकसभा चुनाव उस पर पड़ेगा, क्योंकि ये सीट मुलायम सिंह यादव की सीट रही है और समाजवादी पार्टी जब से सीट पे जीतती रही है लगातार जीतती जा रही है, अभी तक कोई इस पर उसे हार नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए अगर ये जीतती है तो मुझे लगता है एक बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव के घर की सीट रही है। यहाँ से धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव तक जो है सांसद रहे हैं। ऐसे में डिंपल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है वो चुनाव लड़ रही हैं और इसी बात को समाजवादी पार्टी जानते हुए, अखिलेश यादव समझते हुए वो लगातार कैंप किए हुए थे और समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव इस सीट पे घर घर जाकर गांव गांव जाकर प्रचार किया है। उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ भी एक बेहतर संबंध बनाया है ताकि उस सीट को जीत सकें। मुझे लगता है इसी वजह से ये सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी दोनों के लिए आने वाले समय की जो सियासत है उसके मद्देनजर ये सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही इसका कार्यकाल एक साल से कुछ ज्यादा 12-13-14 महीने का कार्यकाल हो, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल मैसेज है वो आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है और समाजवादी पार्टी भी गांव गांव घर घर वोट मांग कर एक तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव ये सीट हार जाते हैं तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जो सियासी भविष्य है उस पर बहुत तमाम तरह के सवाल खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और उससे एक मैसेज आएगा कि जो यादव बेल्ट है वहां भी समाजवादी पार्टी कमजोर है।
अच्छा, आजम खान तो अयोग्य ठहराए गए थे जिसके चलते रामपुर में चुनाव हुआ, यहाँ काफी कम वोट पड़े हैं, लेकिन सपा की हार या जीत से सूबे की सियासत में संदेश क्या जाएगा कबूल?
देखिए, रामपुर की सीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, खासतौर से कई नजरिए से वो समाजवादी पार्टी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, मुस्लिम सियासत के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसके नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। आप देखेंगे कि वो सीट खासतौर से 2022 के चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने एक पसमानदा मुस्लिम का दांव चला है और मुस्लिम सियासत में एक सेंध लगाने की कोशिश की है जो कि अभी तक समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता था, मुझे लगता है उस नजरिए से भी इस सीट को देखा जाना चाहिए। रामपुर सीट भले ही आजम खां के सदस्यता जाने के कारण, सजा याफ्ता होने के कारण सीट खाली हुई है, ये सीट जितनी इंपॉर्टेंस जो है समाजवादी पार्टी के लिए उतनी भारतीय जनता पार्टी के लिए है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। रामपुर की सियासत जो है मुझे लगता है आने वाली जो मुस्लिम सियासत है उसका भी संदेश देगी, इसीलिए रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पूरी जतन जो है वहां ताकत झोंक दी है और वो सीट आजम खां की सीट है जहां पे अगर हम देखें तो 1989 के बाद से एक बार 1996 में आजम खां चुनाव हारे हैं और उसके बाद से लगातार वो जीतते रहे, यहाँ से विधायक होते रहे, अगर वो नहीं बने तो उनके परिवार से उनकी पत्नी विधायक बनी है। तो ये जो समाजवादी पार्टी का रामपुर जो एक मजबूत दुर्ग माना जाता है वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का आने के बाद वो जिस तरह से टारगेट किए हैं और आजम खान उसके निशाने पर रहे हैं और मुस्लिम, मुझे लगता है उस नजरिए से भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। इसीलिए जो आजम खां के तमाम जो करीबी नेता थे, जो मजबूत सिपे सलार थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी खेमे में खड़े हुए नजर आ रहे थे। और वहां पे पूरी जो मुस्लिम लॉबी भी है कुछ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मुझे लगता है कि इस नजरिए से आजम खां की जो रामपुर सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और इसीलिए अगर यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो मुस्लिम वोट है उसमें एक बिखराव दिखेगा, और जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है वो होगा। और एक मैसेज ये भी होगा कि आजम खां की जो सीट कभी नहीं हारी वो भी वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जिस तरह से अभी जून के महीने में लोकसभा उपचुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही रामपुर में। मुझे लगता है वही कोशिश है, क्योंकि यहाँ पे 52% के आसपास मुस्लिम वोट है जो कि यहाँ पे, और ऐसे में ये सीट समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है।
जी, खतौली की सीट हाई प्रोफाइल नहीं है, फिर भी जीतने के लिए बीजेपी ने इतना जोर लगा रखा है, इसके पीछे क्या वजह है?
दरअसल खतौली का जो चुनाव है वो जितना मैनपुरी का इम्पोर्टेंस है मुझे लगता है उससे कम नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जिले की ये सीट है, और वो सीट है जहाँ पे जिस विक्रम सैनी जो वहां से विधायक थे दो बार के, वो मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी होने के नाते, आरोपी मतलब उसमें सजा याफ्त हुए मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में, तो आप समझ सकते हैं उसमें दोषी करार दिए गए हैं। और वही मुजफ्फरनगर दंगा है जहां से भारतीय जनता पार्टी को सियासी संजीवनी मिली है उत्तर प्रदेश की सियासत में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से कभी अपनी जड़ें नहीं जमा पाई थी वो इस दंगे के बाद इस इलाके में जड़ें जमाई। तो एक समझ सकते हैं मुजफ्फरनगर की वो खतौली जो सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 के चुनाव में किसान आंदोलन के असर होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने में सफल रही है। ये सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। अगर ये सीट से जयंत चौधरी ने अपने कैंडिडेट को उतारा है, मदन भैया जो कि बहुबली हैं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन वो गुजर समुदाय से हैं, तो एक नया कम्बिनेशन जयंत चौधरी ने उस सीट पे बनाया है, गुजर जाट और मुस्लिम कम्बिनेशन, और दलित समर्थन हासिल करने के लिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जो कि दलित नेता है, भीम आर्मी के नेता है, उनका समर्थन हासिल किया है, और वो भी सीट पे प्रचार करते नजर आए। तो एक कम्बिनेशन जो जाति कम्बिनेशन है वो बनाने की कोशिश की है ताकि उस सीट को जीत सकें, क्योंकि वहां से विक्रम सैनी की पत्नी जो है राजकुमारी सैनी चुनाव लड़ रही हैं। सैनी समुदाय का वोट अच्छा खासा है, लेकिन गुज्जर वोट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है।
बहुत बहुत शुक्रिया कबूल अहमद। लखनऊ में एक शादी का मंडप, स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को हार पहनाने के लिए खड़े होते हैं, माहौल तालियों से गूंज उठता है, हंसी खुशी का माहौल है, और तभी दूल्हा आगे बढ़ता है, दुल्हन को माला पहनाने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर उसी वक्त दुल्हन स्टेज पर गिर जाती है, हड़कंप मचता है, दुल्हन को उठाया जाता है, आनंद फानंद में अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट अटैक से दुल्हन की मौत हो गई। हाल फिलहाल में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आई हैं, आप तक भी पहुंची होंगी। बरेली में 23 साल के एक टीचर की प्रार्थना सभा के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रयागराज में क्रिकेट खेलते वक्त 25 साल का एक नौजवान भी इसी तरह मारा गया। एक सीसीटीवी फुटेज मेरठ का भी है, इसमें कुछ दोस्त हैं एक गली से पैदल निकल रहे हैं और तभी उनमें से एक लड़का छींकता है, कुछ कदम आगे जाकर लड़खड़ाकर गिर जाता है, पता चलता है उसकी भी मौत हो गई। और एक मामला गाजियाबाद का है, यहाँ 35 साल के एक जिम ट्रेनर की भी हार्ट अटैक से मौत हुई। अच्छे भले लोगों की हार्ट अटैक से होने वाली मौत आए दिन खबर बना रही हैं और इसीलिए एक चिंता का विषय हो गया है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इसे कोरोना की वैक्सीन से जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि इसका कोई सबूत अभी तक तो प्रमाणिक तौर पर नहीं आया, मगर यह हकीकत है कि बीते कुछ सालों में नई उम्र के लोगों में हार्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़े हैं। 18 से 35 साल के लोगों में टाइप 2 डायबिटीज के केस भी सामने आए हैं, जो नौजवानों के दिल की सेहत के खराब होने की गवाही देते हैं। मगर सवाल है कि हालिया दिनों में जिस तरह के वीडियोज एक के बाद एक आए, क्या केसेस वाकई बढ़े हैं या पहले भी इतने केस थे, अब विजिबिलिटी ज्यादा हो गई है, इसका कारण क्या लगता है? तो ये सब बातें हमने पूछी उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के फाउंडर डॉक्टर सुचिन बजाज से।
देखिए, कोविड के बाद डेफिनेटली हार्ट अटैक्स के रेट बढ़े हैं। 30 दिन और एक साल के अंदर रिकवरी के कोविड के, जो भी कोविड से बचते हैं लोग, उनको 52% ज्यादा चांसेस हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के, 63% ज्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के, और 72% ज्यादा चांसेस हैं हार्ट फेलियर होने के। तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, डेटा भी उसको बैक कर रहा है। और स्पेशली यंग हार्ट अटैक्स जो कि पहले बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक थे, हम बहुत न्यूज भी देख रहे हैं यंग लोग एक्सरसाइज करते हुए, जिम में जाते हुए, बिल्कुल फिट लोग जो मैराथन रनर्स हैं उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो हमें समझना होगा कि कोविड एक ऐसी प्रो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है अंदर, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्लॉट्स बनने ज्यादा हो जाते हैं हार्ट में। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि पोस्ट कोविड रिकवरी के हमें अपना चेकअप करा लेना चाहिए, डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, एक्सरसाइज उतनी ही करनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी अलाउ करे, और अगर हम पहले बिल्कुल फिट रहे हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कोविड के बाद भी रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोविड की सीवियरिटी और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस लाइक लॉन्ग कोविड, हार्ट डिजीज एटसेट्रा का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इवन वेरी माइल्ड कोविड जो ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक कोविड है, उसके बाद भी आपको लॉन्ग कोविड हो सकता है या हार्ट डिजीज हो सकती है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक खास पैटर्न है अचानक होने वाली इन मौतों में, ज्यादातर लोग किसी फिजिकल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व थे ही, जैसे शादी में डांस कर रहे थे, जिम में वर्कआउट कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या ये भी एक तरह का फैक्टर है या आप कोई और वजह भी देखते हैं?
नहीं, इत्तेफाक नहीं है, ये डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा मैंने कहा पोस्ट कोविड यंग हार्ट अटैक्स ज्यादा हो रहे हैं। तो जब आप ओल्ड हो जाते हैं और आपको स्लोली ब्लॉकेजेस डेवलप होती हैं हार्ट में, तो एक कोलेट्रल सप्लाई होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। कोलेट्रल मतलब हार्ट अपनी छोटी छोटी आर्टरीज को खोल देता है और वहां से ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाता है। इसको इस तरह से एग्जांपल लीजिए कि अगर आप रोज ऑफिस से घर जाते हैं और आपको पता है कि मेन रोड में हमेशा जैम रहता है, ब्लॉक रहता है, तो आप कोई रास्ता ढूंढेंगे कि साइड की गली से हम निकल जाएं, कोई और रास्ता पकड़ लें जिससे हम घूमते घूमते घर पहुंच सकें थोड़ा अंदर अंदर से, तो यू विल फाइंड दैट वे। और ब्लड भी ऐसा ही करता है कि कोलेट्रल्स ढूंढ लेता है और वहां से सप्लाई शुरू कर देता है। बट यंग लोगों में क्योंकि अचानक हार्ट अटैक होता है, अचानक हार्ट डिजीज डेवलप हो जाती है, तो उनके पास कोलेट्रल्स नहीं होते, उनके पास छोटी आर्टरीज डेवलप नहीं होती, पता नहीं होता ब्लड को कि उधर से भी जा सकते हैं। तो क्योंकि उस बड़ी आर्टरी में सडनली ब्लॉक आता है और वो जरा सा भी एक्सरसाइज करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, उस समय आर्टरी उनकी ब्लॉक हो जाती है, कोलेट्रल्स होते नहीं है, तो इसी वजह से अचानक मैसिव हार्ट अटैक आता है जिसमें कि सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता चेस्ट पेन रहने का, घबराहट रहने का, हॉस्पिटल जाने का, क्योंकि जरा सी भी ब्लड नहीं जा पाती साइड वाली आर्टरी से, तो 100% ब्लॉक सडनली होता है और इसी वजह से सडन कार्डियक डेथ्स बोलते हैं जिनको हम SCDs।
डॉक्टर साहब, तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पर कोरोना वैक्सीन से जोड़कर इसे देख रहे हैं, उनका कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद से ऐसी मौतें बढ़ी हैं, हालांकि अभी तक इसका कोई पुख्ता आधार तो नहीं आया, पर क्या इसे वैक्सीन के किसी तरह के साइड इफेक्ट से जोड़कर देखा जा सकता है?
देखिए, हम डॉक्टर्स तो साइंस पर ही बात कर सकते हैं और एविडेंस बेस्ड ही काम करते हैं हम लोग, कंजेंचर्स वगैरह को आंसर करना बहुत मुश्किल है। देखिए, हर एक के अपने अपने थॉट्स हैं, वो 100 मुंह 100 बातें वाली बात है। सारा डेटा जितना भी मैंने अभी आपको बताया है वो पोस्ट कोविड डेटा डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि कोविड अंदर इन्फ्लेमेशन कर रहा है। तो वैक्सीन से अभी तक कोई डेटा नहीं है हमारे पास जो लिंक कर सके कि हार्ट डिजीज हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये एक मिथ है, क्योंकि मैंने कहा कि कोविड की सीवियरिटी से रिलेटेड नहीं है हार्ट डिजीज। तो कुछ लोग समझते हैं कि अरे इसको तो बहुत माइल्ड कोविड हुआ था, ये कैसे मर गया, इसको तो सीवियर कोविड नहीं था, हॉस्पिटल में भी नहीं गया था। क्योंकि कोविड की सीवियरिटी से रिलेटेड नहीं है हार्ट डिजीज, इस वजह से शायद कोरिलेशन नहीं कर पा रहे हैं लोग। बट जितने भी ये कार्डियक डेथ्स हो रहे हैं यंग, आप जाके देखेंगे उनको तो वो डेफिनेटली उनको कोविड हुआ था पीछे, चाहे वैक्सीन लगी हो चाहे ना। तो ये कोविड से जरूर रिलेटेड है, बट कोविड वैक्सीन से इसका अभी तक कोई रिलेशन हमें नहीं मिल पाया है, ना ही कोई प्रूफ है। ऑब्वियसली रिसर्च अभी भी चल रहा है एंड वी विल कीप कंटिन्यूइंग रिसर्च, बट अभी तक ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया सुचिन बजाज जी। और आखिर में करते हैं खतर का रुख, जहां फीफा वर्ल्ड कप का कारवां राउंड ऑफ 16 से क्वार्टर फाइनल की तरफ कूच कर रहा है। शनिवार को नीदरलैंड्स ने यूएसए को हराकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री पा ली। कल मेसी की अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया का पत्ता साफ कर दिया। 10 तारीख को ये दोनों टीमें क्वार्टर्स में आमने सामने होंगी। बाकी दो मैचेस में फ्रांस ने पोलैंड को और इंग्लैंड ने सेनेगल को हराकर क्वार्टर फाइनल की टिकट बुक कर ली है। 11 दिसंबर को इनकी भिड़ंत होगी। तो अब तक सीन ये है कि राउंड ऑफ 8 की 8 में से 4 टीम्स के नाम साफ हो गए हैं, 4 के आने बाकी हैं। तो अब तक के प्री क्वार्टर्स पर, आगे के मैचेस पर हमारे सहयोगी कुमार केशव ने बात की इंडिया टुडे.इन के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सौरभ श्रीवास्तव से।
सौरभ, ये बताइए, 4 टीमें जो हैं क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं फीफा वर्ल्ड कप के, और 4 टीमों का नाम जो है अभी सामने आना बाकी है। तो पहले जो 4 टीमें पहुंच गई हैं उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। क्या इनका आना तय था वहां पे, या मतलब कुछ सरप्राइजिंग आपको इसमें लग रहा है?
नहीं, जो 4 टीमें जो अभी क्वार्टर फाइनल पहुंची हैं, चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चारों पावर हाउस हैं फुटबॉल के। तो इनका वहाँ पहुँचना ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक अतिशोक्ति होगी या फिर एक ऐसा चीज़ होता है कि नहीं ये नहीं पहुँच, ये बहुत अच्छी टीमें हैं और उम्मीद है कि इन चारों के बीच जो मुकाबला होगा क्वार्टर फाइनल में बहुत ही खतरनाक होगा। खासतौर पर फ्रांस जो डिफेंडिंग चैंपियन है और अर्जेंटीना जिनके पास मेसी है, और मेसी का यह शायद आखिरी वर्ल्ड कप है, तो उनको ये वर्ल्ड कप जीतना है अपना वो ट्रॉफी का कोटा पूरा करने के लिए। तो काफ़ी अच्छे मुकाबले हुए हैं, लेकिन ये चारों टीमों का वहाँ पहुँचना बहुत अच्छी बात है फुटबॉल के लिए, पावर हाउस आगे बढ़ रहे हैं।
आज भी जो है 2 मुकाबले होने हैं जिससे 2 टीमों का तो पता चल जाएगा, उसके बारे में क्या कहें?
आज सबसे बड़ी बात है कि 2 एशियन टीमें खेल रही हैं। जापान खेल रही है, पहला मैच है क्रोएशिया के साथ, आज का पहला राउंड ऑफ 16 मैच, प्री क्वार्टर फाइनल मैच, और दूसरा जो मैच है वो साउथ कोरिया खेलेगी ब्राज़ील के साथ। दोनों टीमों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन जापान ने जिस तरह ग्रुप में परफॉर्मेंस की थी ग्रुप स्टेज पे, मतलब आपने स्पेन को हराया, आपने जर्मनी को हराया, जो वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीते हैं उनको आपने हरा दिया है, और उस ग्रुप को टॉप करके आए हैं जिसको ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा था। तो उस ग्रुप से अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आगे इस मैच में उनको अच्छा फाइट देना चाहिए क्रोएशिया को। हालांकि क्रोएशिया की टीम का ये है कि वो पिछले 10 में से 9 मैच हारे ही नहीं है, एक मैच ड्रॉ हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी जापान के लिए। दूसरा जो मैच है साउथ कोरिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि ब्राज़ील जैसी टीम है सामने, और उनका यहाँ पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। वो यहाँ पहुँच गए हैं, उन्हें पुर्तगाल को हराया यहाँ पहुँचने के लिए, तो काफ़ी अच्छा मुकाबला होने वाला है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ब्राज़ील तो पहुँच रही है आगे आने वाले राउंड में, यहाँ दूसरा वाला जो मैच है क्रोएशिया और जापान में कांटे की टक्कर होगी। अगर जापान पहुँचती है तो पहली बार होगा कि वो क्वार्टर फाइनल वर्ल्ड कप खेल रही होगी।
एक सवाल सौरभ, आपने कहा मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनका भी ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, पुर्तगाल का मैच होना है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल, मेसी ने अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुँचा दिया, काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी अच्छा खेला, एशियन टीम जो एशियन कॉन्फेडरेशन में आती है। रही बात अभी पुर्तगाल की, तो उनको स्विट्जरलैंड को हराना है, काफ़ी मुश्किल नहीं होना चाहिए जिस तरह का उनके पास टैलेंट है। अटैक देखें आप, उनका डिफेंस देखें, उनका गोलकीपिंग देखें, लेकिन रोनाल्डो की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। उम्मीद है कि जिस तरह मेसी अपनी टीम के लिए स्टेप अप करके उन्होंने परफॉर्म किया है और टीम को आगे ले गए हैं, रोनाल्डो भी आगे ले जाएंगे, बिकॉज इन दोनों का ये आखिरी वर्ल्ड कप है। होपफुली, मतलब ऐसा लग सबको लग रहा है कि एक वो इंग्लिश में एक टर्म है लास्ट डांस, तो ये लास्ट डांस है उनका। तो उम्मीद यही है कि ये दोनों आगे खेले, अच्छा खेले, पुर्तगाल भी अपना मैच जीते और अर्जेंटीना भी जीतते जाए और फाइनल इन दोनों के बीच हो, चाहे जो भी ट्रॉफी होता है।
शुक्रिया केशव, शुक्रिया सौरभ। तो दिन भर में आज इतना ही, और चलते चलते जरूरी बात, सोमवार को नामी गिरामी आता है आज तक रेडियो पर, आपको मालूम है। इस बार बात हुई है साउथ की दिग्गज अभिनेत्री और नेत्री जयललिता की, कहानी सुनिएगा उनकी, और आज उनकी पुण्यतिथि भी है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट radio@aajtak.com पर, आप बता सकते हैं 9953232303 पर भी। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड मिक्सिंग किया है कपिल देव सिंह ने, मेरा नाम नितिन ठाकुर है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।